भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया शुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाभारत में हम लोग चर्चा कर रहे थे यक्ष संवाद पर। पिछले मंगलवार को क्लास नहीं हो पाई, रथ यात्रा का उत्सव था, तो उससे पहले हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच संवाद प्रारंभ हुआ। चारों भाई उससे पहले आए थे वहाँ पर पानी लेने के लिए, लेकिन यक्ष के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया और फिर इसीलिए उन चारों की मृत्यु हो गई। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज आए, बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इन चारों को मार सकता है, किसमें इतनी शक्ति है। और फिर जब वे भी पानी लेने के लिए गए तो यक्ष ने उनको भी चेतावनी दी और फिर उन्होंने उसके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। कई शिक्षाएं इन प्रश्न और उत्तर से हमें मिलती हैं। पहली शिक्षा हम लोगों ने ग्रहण की कि किस प्रकार किसी दूसरे की संपत्ति को हथियाना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर महाराज ने यक्ष से कहा कि अगर ये संपत्ति तुमने पहले से ले रखी है तो मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा, चिंता नहीं करना। और फिर उसने कई प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर महाराज उत्तर देने लगे। कुछ प्रश्नों की चर्चा हम लोगों ने पिछली बार की थी कि क्या ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे मिलता है, ज्ञानी किसे कहते हैं। फिर आगे प्रश्न हुआ था कि क्या त्याग देने से व्यक्ति सभी का प्रिय बन जाता है, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छोड़ देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आखिरी प्रश्न इच्छाओं के ऊपर था जो हम लोगों ने चर्चा किया। कि किस प्रकार इच्छाएं इस भौतिक जगत में व्यक्ति को कष्ट देती हैं, और जब तक वो इच्छाओं को त्यागता नहीं है तब तक वो सुखी नहीं हो सकता, आनंद में नहीं रह सकता, या कहना चाहिए कि वो धनवान नहीं बन सकता, असली धन को प्राप्त नहीं कर सकता। तो आगे यक्ष ने कई प्रश्न किए, हमने आपको बतलाया था करीब 100 प्रश्न यक्ष ने किए, जिनके उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी से दिए, और उनमें से कुछ प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक प्रश्न उन्होंने किया था कि ऐसी क्या चीज़ है जिसको त्यागने से व्यक्ति प्रसन्न होता है। वैसे देखा जाए तो कोई चीज़ त्यागने से व्यक्ति प्रसन्न नहीं होता। अगर कोई चीज़ चली जाती है जो उसके पास है, जो उसने संभाल कर रखी है, फिर उसको जब वो त्याग देता है तो बड़ा कष्ट होता है त्यागने में, वैराग्य में। लेकिन प्रश्न ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको त्याग देने से व्यक्ति बहुत प्रसन्न हो जाता है। और इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। युधिष्ठिर महाराज ने बतलाया कि जब व्यक्ति लोभ को त्याग देता है तो वो सही दृष्टि में प्रसन्न होता है। जब तक लोभ को पकड़े रहता है, जब तक लोभी रहता है, तब तक वो प्रसन्न नहीं रह सकता। और ये बहुत सुंदर बात है, अगर हम लोग इसका ध्यान से अध्ययन करें तो पाएंगे कि कितना सही है ये। हम सब जीवन में लोभी होते हैं, लोभ करते हैं ताकि सुखी हो सकें, प्रसन्न हो सकें, लेकिन ये लोभ ही हमें सुखी नहीं होने देता। और कैसे नहीं होने देता, इसके कई उदाहरण हैं। बहुत सुंदर वर्णन कई स्थानों पर हुआ है लोभ के बारे में, कि कितना, भगवद गीता में भी भगवान ये समझाते हैं कि ये तीनों काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको त्याग देना चाहिए। तस्मादेतम त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ना चाहिए, किसको, काम क्रोधस तथा लोभस। तो लोभ हमारे लिए नरक का द्वार खोलता है, ऐसा भगवद गीता में भगवान बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, आत्मा के लिए नाश का द्वार, नरक का द्वार, नरकस, त्रिविधम नरकस्येदम, और वो है काम क्रोधस तथा लोभस। लोभ जब व्यक्ति का बढ़ जाता है तो वो अपने ही असली स्वार्थ को भूल जाता है, या कहना चाहिए भौतिक दृष्टि से भी स्वार्थ को भूल जाता है। बहुत बार ये कथा आप लोगों ने सुनी होगी जिसको अर्ध कुकुट न्याय कहते हैं, कि एक व्यक्ति था जिसके पास एक मुर्गी थी जो अंडा दिया करती थी, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, और ये व्यक्ति हर रोज एक अंडा उससे प्राप्त करता था। तो एक बार उसने सोचा कि ये मुर्गी रोज इतने अंडे दे, एक अंडा देती है, एक ही बार इसको काट दिया जाए, या इसका आगे का भाग काट दिया जाए, क्योंकि आगे से खाती बहुत है, तो फिर मुझे केवल अंडा मिलता रहेगा। एक कथा ऐसे है, और दूसरी कथा ऐसे है कि उस व्यक्ति ने सोचा कि इसके अंदर बहुत सारे अंडे होंगे, रोज एक ही देती है, एक ही बार काट के सारे निकाल लेता। तो उसने उस मुर्गी को काट दिया, उसको खून के अलावा कुछ मिला नहीं, सोने के अंडे थे नहीं। तो इस प्रकार लोभ भौतिक दृष्टि से तो हमारा नाश करता ही है, और आध्यात्मिक दृष्टि का कहना ही क्या। जब इस जगत में कोई चीज़ हमारा नाश कर सकती है तो फिर आध्यात्मिक दृष्टि से तो वो नाश करती ही है, जब तक लोभ को शुद्ध नहीं किया जाता। और लोभ क्या है, लोभ से जो इच्छाएं जनित उत्पन्न होती हैं वो क्या है, क्या वो कभी नियंत्रित हो सकती हैं। एक बहुत सुंदर उदाहरण और एक है, एक कहानी, एक कथा बताई जाती है एक राजा की। एक बार एक राजा जिस बाहर निकला अपने राज्य में, तो उसने देखा कि एक भिखारी खड़ा है, एक हाथ में कटोरा लेकर, खाली कटोरा है उसके। तो राजा ने पूछा भिखारी से, क्या चाहिए तुम्हें? तो भिखारी हंसने लगा और हंसकर उससे पूछने लगा कि जो मुझे चाहिए वो तुम दे सकते हो? तो राजा के लिए तो बड़े अपमान की बात हो गई, एक भिखारी और राजा से कहे कि तुम मुझे दे सकते हो क्या? तो राजा ने कहा, हाँ तुम जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो उसने कहा राजा से कि आप सोच लो, ये जो वचन आप दे रहे हो इसको पूरा कर पाओगे? जो मैं मांगूंगा वो दे पाओगे? तो राजा को और क्रोध आ गया, अरे कैसा भिखारी है, भिखारी होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। उसने कहा मांगो, क्या मांगना है? तो उसने कहा कुछ ज़्यादा नहीं, केवल ये जो मेरा कटोरा है इसको भर दीजिए बस। तो राजा ने कहा इतना ही? कहा बस मेरा कटोरा भर दीजिए तो आप जो अब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। उसने कहा ठीक है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया कि इसके कटोरे में जितना धन आता है डाल दो। मंत्री लेकर आए, उसने धन डाला, जैसे ही धन डाला मानो ऐसा हो कि उसमें गया ही नहीं हो, सारा खाली हो गया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। मंत्री भी और लाए, फिर डाला, पूरा भरा, फिर खाली। तो वो डालते गए डालते गए डालते गए, सुबह से शाम हो गई, सारा खजाना खाली हो गया, हीरे रत्न जवाहरात सब खत्म हो गए, लेकिन वो कटोरा खाली का खाली ही था। तो शाम को राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उस व्यक्ति के चरणों में गिर गया और उसने कहा कि मुझे केवल एक बात बताइए, ये कटोरा बना किससे है? क्या है इसमें? तो फिर उस व्यक्ति ने कहा, वैसे वो एक साधु थे, तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये जो कटोरा है ये हमारे मन से बना है, ये व्यक्ति के मन से बना है। अर्थात वो दर्शाना चाह रहे थे कि हमारा जब लोभ बढ़ जाता है मन में, तो आप कुछ भी डालते जाइए, कुछ भी लेते जाइए, ग्रहण करते जाइए, लेकिन व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, उसका कटोरा खाली ही रहता है। तो ये लोभ है इस जगत का कि हम जितना भी ले लें कभी संतुष्टि नहीं देता है। व्यक्ति के पास पैसा हो, ऐश्वर्य हो, यश हो, लेकिन वो हमेशा और की कामना करता है। तो एक दृष्टि से कहना चाहिए कि व्यक्ति के पास चाहे जितना ही धन क्यों ना आ जाए, अगर वो लोभी है, धन का लोभी, तो फिर वो हमेशा गरीब रहेगा, चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, क्योंकि उस धन का वो आनंद नहीं ले पाएगा, और मांगेगा और आ जाए और आ जाए। और ये जो धन होता है, जो लोभ होता है, ये लोभ बहुत से बुरी चीजों को लाता है अपने साथ में। सबसे पहली चीज लोभ से होती है कि व्यक्ति दास बन जाता है, क्योंकि उसके लिए कार्य करता रहता है, उस लोभ के लिए, अपने लिए नहीं करता, क्योंकि लोभ ही है। जीवन में जो चाहिए वो है, लेकिन लोभ के कारण और कार्य करता रहता है, तो दास बन जाता है उसी लोभ का। जिस लोभ से वो आनंद पाने का प्रयास करता है, या जिस लोभ के कारण वो सोचता है कि मैं जगत में सबसे श्रेष्ठ हो जाऊंगा, तो वही हमेशा एक दास बना रहता है, या कहना चाहिए कि एक भिक्षुक, एक भिखारी बना रहता है। जैसे वो भिखारी था कटोरा लेकर, उसका कटोरा हमेशा खाली, तो एक लोभी व्यक्ति का कटोरा हमेशा खाली होता है, उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होगा, चाहे कितना ही क्यों ना मिल जाए। तो इस प्रकार से वो हमेशा एक दास, एक भिक्षुक बना रहता है। तो लोभ सबसे पहला नुकसान ये करता है कि वो हमें एक दास बना देता है, गुलाम बना, दास भी नहीं, गुलाम कहना चाहिए, गुलाम बना देता है। दूसरा, ये जो लोभ है ये उस प्रकार है जैसे एक उदाहरण दिया जाता है रेशम के कीड़े का। रेशम का कीड़ा रेशम के धागों को बनाता है और बनाता रहता है, बनाता रहता है, बनाता रहता है, धीरे धीरे उसी में अंदर फंस जाता है। उसको वो ककून कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में या मराठी में क्या कहते हो? हाँ, पोष कोष, तो वैसे बनाता रहता बनाता रहता बनाता रहता, फिर उसी में उसी के कारण मर जाता है। लोग उसको उठाकर पानी में बॉईल कर देते हैं, क्योंकि कीड़े को निकाला नहीं जा सकता, इसीलिए वो धागे के साथ वो कोश के साथ बॉईल कर देते हैं उसको, सिल्क निकालने के लिए। और उस सिल्क को हम लोग बड़े प्रेम से पहनते हैं। तो जो लोभी व्यक्ति होता है, ये उस सिल्क के कीड़े के समान होता है, जो बनाता जाता है बनाता जाता है बनाता जाता है अपने लिए, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, संतुष्ट नहीं, और फिर अंत में वही उसकी मृत्यु का कारण बनते हैं, या वही उसको कष्ट देते, जीवन में भी कष्ट देते हैं। क्योंकि देखिए, जो सिल्क का कीड़ा होता है वो क्या करता है, जीवन भर कभी रुकता है, बनाता रहता है बनाता रहता है बनाता रहता है प्रयास, और अंत में उसी लिए मर जाता है, क्योंकि उसने इतना बनाया इसीलिए मर गया। अगर बनाया नहीं होता तो शायद उसको बॉयल नहीं करते। तो इसी तरह एक लोभी व्यक्ति वो जीवन भर बनाता रहता है बनाता रहता है बनाता रहता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और फिर अंत में वही उसकी तृष्णा, इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा मतलब जो कभी संतुष्ट नहीं होता, तुष्ट नहीं होता। और जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में होता है, लोभी होता है, तो वो अपराध करता है, पाप करता है, क्योंकि लोभी व्यक्ति बहुत पाप करता है। जब व्यक्ति का लोभ बढ़ जाता है तो उसको अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती, पाप पुण्य की समझ नहीं रहती, वो पाप करने लगता है। ये भूल जाता है कि इस पाप का फल मुझे भुगतना पड़ेगा। जैसे अगर कोई लोभी व्यक्ति है, किसी जगह पर से उसको कुछ मिलता है, धन मिलता है, एक राजा क्या वो काम करता है, और राजा ने उसको अपना खजांची बना दिया कि तुम मेरा सारा धन देखो, तो थोड़े समय में जो अगर वो लोभी है, अगर लोभी नहीं है तो बहुत अच्छा है, लोभी है तो एक दिन थोड़ा सा धन निकाल लेगा राजा का। राजा को क्या पता, इतना बड़ा खजाना है, उसमें से 2 सोने के सिक्के चले गए तो राजा को क्या पता चलेगा। फिर अगले दिन और थोड़े निकाल लेता है, फिर और थोड़े, तो ऐसे उसका पाप बढ़ता जाता है, अपराध बढ़ता जाता है। तो ये जो लोभ है, ये बाध्य करता है हमें पाप करने के लिए। हाँ, लोभ होना चाहिए व्यक्ति को, भक्तों को भी होना चाहिए, लेकिन कैसा लोभ? ऐसा लोभ नहीं जो हमें पाप करने के लिए प्रवृत्त करे या प्रेरित करे, ऐसा लोभ जो हमें इस पाप पुण्य के चक्र से मुक्त करे, वो असली लोभ है। लेकिन जो लोभ यहाँ पर जिसकी बात युधिष्ठिर महाराज कर रहे हैं, वो लोभ भौतिक लोभ है। तो इसीलिए इस भौतिक लोभ के चलते व्यक्ति गुलाम हो जाता है, एक कीड़े की तरह, सिल्क बनाने वाले कीड़े की तरह फंस जाता है, अपराध करता है, पाप करता है, और साथ ही साथ उसका कोई भोग नहीं कर पाता। कहना चाहिए कि वो अपना वर्तमान भविष्य के लिए बर्बाद कर देता है, और भविष्य तो बर्बाद होगा ही क्योंकि पाप कर रहा है। तो वर्तमान में भी आनंद नहीं और भविष्य में भी आनंद नहीं। तो इसीलिए लोभ, ये वर्तमान व्यक्ति क्यों वर्तमान को समाप्त कर देता है, ये क्यों खराब करता है, वो भविष्य का सोचता है, हमेशा भयभीत रहता है। लोभी व्यक्ति हमेशा भयभीत रहता है, कहीं चला नहीं जाए, इसीलिए भविष्य के लिए संभाल के रखूं, आज मिल गया है ना, बस और संभाल कर रखूं, तो बड़ा भयभीत रहता है, और इसीलिए अपने वर्तमान को नष्ट कर देता है उस भय के कारण, और भविष्य तो उसका अंधकारमय होता ही है। तो इसीलिए ये लोभ को त्यागना चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। और ये लोभ आता है रजोगुण से। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव वा। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजो गुण ये लोभ को उत्पन्न करता है, रजोगुण का लक्षण है लोभ। तो इसलिए बड़ा संभालना चाहिए, संतुष्टि हृदय में लानी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि इस हम लोभ से दूर जाएं, इस लोभ को त्यागें। तब हम सही में प्रसन्न हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने ऐसे दिया कि जो व्यक्ति लोभ को त्याग देता है वो सही दृष्टि में सुखी होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम सबके लिए है। हमें भी भौतिक लोभ को त्यागना चाहिए, ऐसी चीज़ों के लोभ को त्यागना चाहिए, लालसा को त्यागना चाहिए जो हमें कृष्ण से दूर ले जाए। रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे लाभ का, ऐसे प्रयास का कोई उपयोग नहीं है भक्ति में, कि हम और चीज़ों के लिए प्रयास करते रहें, अनावश्यक चीज़ों के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को हमें त्यागना चाहिए। और अगर लोभ है तो कैसे त्याग सकते हैं लोभ को, उसको शुद्ध करना चाहिए भगवान की भक्ति के द्वारा। हमारा लोभ आज भौतिक चीज़ों के लिए है, भौतिक कामनाओं के लिए है, धन के लिए, यश के लिए इत्यादि, उसी लोभ को हमें कृष्ण के लिए लगाना चाहिए, कृष्ण भक्ति में लगाना चाहिए। हमें भी लोभ होना चाहिए, लेकिन वो लोभ होना चाहिए कृष्ण के लिए। हमें भी धन पाने की इच्छा करनी चाहिए, लेकिन वो कृष्ण के लिए। हम लोग इच्छा करते हैं यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर हो, इतना सारा धन आए कि हम सारे भगवान की बहुत अच्छी से सेवा कर सकें, एक लोभ है। आज हम लोग भगवान को कुछ हजार रुपए की ड्रेस पहनाते हैं, इच्छा है कि कल लाखों रुपए की ड्रेस पहनाएं, लोभ है। लेकिन ये लोभ होना चाहिए, ये लोभ सही है, क्योंकि भगवान के लिए है। हमें ये लोभ नहीं होना चाहिए कि भगवान अगर 5 लाख की ड्रेस पहने तो मैं भी कुछ एक 50,000 लाख की ड्रेस मैं भी पहन लूँ। जो भी है भगवान के लिए, तो इससे लोभ शुद्ध होता है। तो ऐसा लोभ होना चाहिए, ऐसा लालच होना चाहिए, इसको भक्तिमय लालसा कहते हैं। लालसा होनी चाहिए लेकिन भक्तिमय, भौतिक लालसा नहीं, भक्तिमय लालसा। आचार्यों ने कई भजन लिखे हैं, लालसामय प्रार्थना। तो क्या लालसा है उनकी, क्या इच्छा है उनकी, क्या लोभ है उनका, कृष्ण के चरण कमल मिल जाए, ये एक लालसा है। भक्तों का संग मिले, ये एक लालसा है। तो ऐसा लोभ होना चाहिए, ये शुद्ध लोभ है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक भौतिक या मिथ्या और दूसरा शुद्ध या आध्यात्मिक। जैसे हमारा अहंकार एक भौतिक है, मिथ्या अहंकार, और दूसरा शुद्ध है, असली अहंकार। अहंकार है, ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिक जगत में अहंकार नहीं है, केवल यहीं पर अहंकार है। यहां जो अहंकार है वो मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है कि मैं स्वामी हूं, और आध्यात्मिक जगत में असली अहंकार है कि मैं दास हूं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये असली अहंकार है। और इसी प्रकार लोभ, ये भौतिक लोभ है कि मुझे कुछ धन मिल जाए, यश मिल जाए, और उस धन का कोई लाभ नहीं। जिसके लिए जीवन भर मेहनत करे, प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि लोभी व्यक्ति जीवन भर प्रयास करता है, धन इकट्ठा करता है, संग्रह करता है, सोचता है मैं सुखी रहूंगा इससे, आगे का मेरा भविष्य सुखी होगा, लेकिन एक दिन मर जाता है, फिर उस धन का क्या मिलता है। तो इसलिए लोभ को शुद्ध करना चाहिए भगवान की सेवा के द्वारा। तो ये एक प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर युधिष्ठिर महाराज ने दिया। फिर और एक प्रश्न यक्ष ने उनसे किया कि पवन से या हवा से भी तेज चलने वाला कौन है, कौन ऐसा है व्यक्ति, कौन ऐसा है जो पवन से तेज चलता है। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा मन। हमारा मन बहुत तेज चलता है, मन की गति बहुत तेज है, हवा की गति से भी तेज है। वैसे हवा बहुत तेज बहती है, इतनी तेज कि कभी कभी आंधी तूफान आ जाते हैं, घर के घर उड़ जाते हैं, लेकिन उन सबसे भी तेज मन है। आप सोचिए हवा की गति जब बड़ी तेज हो जाती है तो वो कैसे बड़ी बड़ी इमारतों को उड़ा देती है, घर के घर गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, जो भी सामने आता उसको उखाड़ फेंकती। और आप सोचिए हमारे अंदर एक ऐसी वस्तु है, एक छोटी सी, जो उस गति से भी तेज चलती है, तो वो कितना नुकसान, कितना उत्पात कर सकता है ये मन, इसकी गति का हमें अंदाजा नहीं है, इसीलिए इसके द्वारा किए गए उत्पात को भी हम नहीं समझ सकते। जैसे तेज हवाएं अगर समुद्र में आए तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, तेज हवाएं अगर शहरों में आए बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उड़ जाती हैं, क्या क्या चीजें उड़ा के ले जाती हैं, लेकिन उन सब हवाओं से भी तेज है हमारा मन, हमारे मन की गति। तो हमारा मन उड़ाकर ले जाता है, हम कोई योजनाएं बनाते हैं, हम कोई एक बिल्डिंग्स के समान है, हम इमारतें बनाते हैं, लेकिन हमारा मन उसे उड़ाकर ले जाता है, इतनी तेज गति है उसकी। हम भक्ति करना चाहते हैं, मन उड़ा देता है, बहुत शक्तिशाली है ये मन। और मन को वश में करना ये एक कला है, कैसे मन को वश में करना चाहिए, क्योंकि मन को जब तक वश में नहीं करेंगे तब तक सारे हमारे प्रयास विफल है। आप जप करोगे, आप अध्ययन करोगे, आप मंदिर आओगे, लेकिन अगर मन वश में नहीं है तो फिर सब व्यर्थ है। क्योंकि यहां बैठने के बाद भी अगर आपका मन कहीं और है, दर्शन हम कृष्ण के कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, जप कृष्ण के नाम का कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, तो फिर वो उस तरह है कि जप के द्वारा प्रयास कर रहे हो कोई बिल्डिंग बनाने का, कोई इमारत बनाने का, अपनी नींव मजबूत करने का भक्ति में, लेकिन मन उसको उड़ा कर ले जाता है। तो इसलिए मन को वश में करना चाहिए, इसीलिए हम लोग मंत्र का जप करते हैं, मनः त्रायते इति मंत्र, मन को जो तार दे उसको मंत्र कहते हैं। और कैसे हमें मन को वश में करना चाहिए, हमें मन को वश में करना है तो हाँ, एक मार्ग तो है कि हम मंत्र का जप करें, लेकिन दूसरा मार्ग और उसका सहयोग करने के लिए मार्ग हैं, जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग हटाना। उदाहरण देते हैं भगवद गीता में भगवान एक कछुए का, कछुआ जब होता है, कछुआ आप लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ा पत्थर के जैसा होता है, बहुत कठोर, उसके ऊपर आप कूद जाइए कुछ भी कीजिए तो टूटता नहीं है। तो जब कछुआ देखता है कि बहुत खतरा है, उसकी जान को खतरा है, तो अपने सारे अंगों को उस अपनी पीठ के अंदर, या वो जो पत्थर जैसा उसके पीठ पर होता है उसके अंदर कर लेता है और एक पत्थर की तरह पड़ा रहता है जब वो देखता है कि खतरा है। तो इसी तरह भगवान ये उदाहरण देते हैं कि एक योगी को, एक भक्त को जानना चाहिए कि जब मन उसको खतरे में ले जा रहा है इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि मन को भी एक इंद्रिय ही माना गया है, छठी इंद्रिय कहते हैं मन को। इसीलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं मनषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति, मन को मिलाकर ये जो छह इंद्रियां हैं इनके द्वारा कर्षति, संघर्ष कर रहा है जीव इस जगत में, मनषष्ठानि इंद्रियाणि। तो जैसे एक कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर खींच लेता है, ऐसे ही मन को वश में करने के लिए हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रिय भोग से दूर खींचना चाहिए, परे ले जाना चाहिए। भगवान ये एक मार्ग बतलाते हैं। लेकिन केवल इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से अलग रखना ये पूर्ण नहीं है। जैसे आंखें हैं, अगर उन्हें आंखों का एक विषय है रूप, तो कोई कहे कि भगवान ने कहा कि उनको विड्रॉ कर लो, उनको दूर कर लो, तो आंखों से हम कोई रूप नहीं देखेंगे तो क्या करेंगे, आंखें तो फोड़ नहीं सकते हैं, अंधे तो हो नहीं सकते हैं, आंखें बंद कर चल नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहला मार्ग है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर करना और फिर उन इंद्रियों को सही स्थान पर लगाना। जैसे अगर हमें आंखों से कोई देखना है तो भगवान का सुंदर रूप देखना चाहिए, कानों से सुनना है तो भगवान का नाम सुनना चाहिए, जिह्वा से अगर कुछ बोलना है तो भगवान का नाम बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये इंद्रियों का उपयोग है। जैसे हम लोगों ने सुना, सबै मनः कृष्ण पदारविन्देव वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादो। किस प्रकार से सबै मनः, पहले अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में लगाना चाहिए। सबै मनः कृष्ण पदारविन्देव वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपनी वाचा से वैकुंठ गुणानुवर्णने, भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। करो अपने हाथों से मंदिर मार्जन आदव, मंदिर का मार्जन करना चाहिए, पैरों से चल कर आना चाहिए मंदिर। तो इस तरह जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर मन शांत रहता है या मन वश में रहता है। मन को वश में करने का उपाय ये है कि हम अपनी बुद्धि को बलवान करें। भगवान बताते हैं कि मन को वश में कैसे करना चाहिए। अर्जुन से जब भगवान ने कहा तो अर्जुन ने कहा कि चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। ये जो मन है ये बहुत चंचल है और बहुत बलवान है, दृढ़ है, मैं इसको वश में नहीं कर सकता। आप कहिए तो मैं अपने बाणों से जो हवा बह रही है इसको बंद कर सकता हूं, हवा का बहना बंद कर सकता हूं, लेकिन मन को नहीं वश में कर सकता, इतना चंचल है मन। और भगवान ने क्या कहा, असंशय महाबाहो, ये जो तुम कह रहे हो ये सब सही है, इसमें कोई संशय नहीं है। असंशय महाबाहो मनः दुर्निग्रहम चलम, ये जो मन है ये बड़ा कठिन है, बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो चीजें करो अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य, और इन दो चीजों का पालन करके तुम मन को वश में कर सकते हो। तो अभ्यास चाहिए, अभ्यास से दृढ़ता आती है, वैराग्य से दृढ़ता आती है, और जहां दृढ़ता है वहां मार्ग है। इंग्लिश में कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हमें क्यों छोड़ना चाहिए, हम क्यों कमजोर हो जाते हैं, हम क्यों भक्ति नहीं कर पाते, हम सोचते हैं अभी नहीं अगले जन्म में भक्ति होगी, इस जन्म में भक्ति केवल सन्यासियों के लिए। नहीं, क्यों छोड़ना चाहिए, जब हमारी इच्छा तीव्र होगी, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर मन को हमने दृढ़ बनाया, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य से, तो फिर इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी स्थान में रहते हुए हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। ये विश्वास होना चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए। क्यों नहीं होगा, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें भक्ति करने से रोक सकती है, कोई भी नहीं। भगवान के धाम की प्राप्ति हम सब कर सकते हैं, केवल वो तीव्र इच्छा चाहिए। कौन है, कौन सी ऐसी भौतिक वस्तु है जो हमें भगवान के धाम तक जाने से रोक सकती है, केवल एक ही है, हमारा मन। बाहर का कोई व्यक्ति हमें रोक नहीं सकता, बाहर की कोई परिस्थिति हमें रोक नहीं सकती, लेकिन हमारा मन हमें रोक देता है, आड़े आ जाता है, हमारा अहंकार आड़े आ जाता है। इसीलिए भगवान और हमारे बीच में हमारा अहंकार है। तो इसलिए मन को वश में करना चाहिए। जब व्यक्ति मन को वश में करता है, जय श्री राधा गोकुलानंद की, तब वो इंद्रियों को वश में कर पाता है, इच्छाओं को वश में कर पाता है। उपनिषदों में तुलना की गई है शरीर की एक रथ से, एक रथ जिसके पांच घोड़े हैं, पांच इंद्रियां ये पांच घोड़े हैं, और घोड़ों की लगाम ये मन है, बुद्धि ने लगाम को थामा हुआ है और आत्मा उस रथ पर बैठा है। अगर बुद्धि शक्तिशाली नहीं है तो फिर आत्मा की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, फिर जैसा मन कहता है वैसा होता है। मन में तीन चीजें होती हैं। एक होते हैं हमारे पूर्व अनुभव, हमने जो पहले अनुभव किए हैं वो पूर्व अनुभव रहते हैं हमारे मन में। एक होती हैं अतृप्त इच्छाएं, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हैं। और तीसरी होती हैं असंख्य विचार। एक प्रश्न ये भी था, यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था कि इस जगत में घास के जितने तिनके हैं उससे भी ज्यादा क्या है। तो उन्होंने कहा व्यक्ति के विचार, अलग अलग विचार आते रहते हैं। तो ऐसे विचार, तो ये तीन चीजें हमारे मन में रहती हैं, असंख्य विचार हैं, अतृप्त इच्छाएं हैं और पूर्व के अनुभव हैं। और इन तीन चीजों के आधार पर मन हमें तंग करता रहता है, कष्ट देता रहता है। आप सोचते हो हमें भक्ति करनी है, इच्छाओं को कम करना है, मन प्रस्तुत कर देता, अरे क्यों करना है। कोई लड़का सोचता है अब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया, अब मुझे ब्रह्मचारी बनना है, तो मन लाता है क्या जरूरत है ब्रह्म, क्या शादी करके नहीं रह सकते क्या, इतने सारे लोग रहते हैं बेलगाम में, 1000 लोगों का कांग्रीगेशन है, केवल 25 ब्रह्मचारी हैं, बाकी सब कांग्रीगेशन है ना, क्या प्रॉब्लम है। ये भी सही बात है, शादी करके रहो। फिर किसी के पास जाते तो कोई समझा भी देता है कि बेटा देखो शादी करके रहो अच्छा है, कल को कुछ तकलीफ हो जाएगी ब्रह्मचारी आश्रम में क्या फायदा है, हाँ आराम से रहो। तो मन तुरंत एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है कि जहां हमारा पूर्व अनुभव, अतृप्त इच्छाएं और असंख्य विचार हमें बाध्य कर देते हैं भगवान से दूर जाने के लिए, और बुद्धि शक्तिशाली हो नहीं पाती। बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि का मतलब क्या है? बुद्धि के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, अच्छे बुरे को जानने की शक्ति, डिस्क्रिमिनेशन पावर। बुद्धि मतलब देखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। मन तो बहुत कुछ कहेगा लेकिन बुद्धि के तार द्वारा उसका नाश करना चाहिए, उसको दमन करना चाहिए। तो ये तीन चीजें हमारे मन में रहती हैं जिस कारण से कई नई इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। जैसे हमारे अंदर कोई भी इच्छा हो जाए, कोई चीज खाने की, कोई चीज पहनने की, तो मन तुरंत उसके पूर्व अनुभव के आधार पर उन इच्छाओं को और बढ़ा देता है और इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो इस तरह से मन को वश में करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो व्यक्ति मन को वश में कर लेता है तो वो व्यक्ति, हाँ ऐसा भगवद गीता में बताया गया है कि वो व्यक्ति परमात्मा को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, जिसने मन को जीत लिया है। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः। जो व्यक्ति जीत चुका है अपने मन को, उसने उस प्रशांत हो जाता है। जितात्मनः प्रशांतस्य, शांति नहीं प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, पूरा प्रशांत आराम से शांत रहता है। शांत रहना मतलब इंद्रियां उसको कष्ट नहीं देती, सुख और दुख में विचलित नहीं होता, हार और जीत में समान बना रहता है और इस तरह से इस जगत के द्वंद्वों से परे चला जाता है। क्योंकि इस जगत में केवल द्वंद्व हैं, इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा अर्जुन से, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, इस द्वंद्व के परे जाओ। बहुत सारे द्वंद्व हैं इस जगत में, हार जीत सुख दुख जीवन मृत्यु, इससे परे जाओ। तो इससे परे कौन जा सकता है? जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता, ऐसा मान लेना चाहिए कि वो परमात्मा के निकट आ जाता है। क्योंकि इस जगत में केवल मन को ही वश में करना सबसे कठिन कार्य है। मन वश में हो गया तो फिर समझ लीजिए कि आप बड़ी आसानी से जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। कई भौतिक चीजों में भी लोग मन को वश में करते हैं, कोई थोड़ा बहुत वैराग्य दिखलाते हैं जो भगवान की भक्ति से संबंधित नहीं है, तो लेकिन वो बड़े प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि मन को वश में किया है। मन को वश में करना चाहिए लेकिन उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने मन का वर्णन किया। आगे और एक प्रश्न यक्ष ने उनसे किया कि सबसे अच्छा धन क्या है, और युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि ऐसा ज्ञान जो वैदिक शास्त्रों पर आधारित है वो सबसे अच्छा धन है, क्योंकि इस धन को कोई लूट नहीं सकता। हम लोग तो जो धन इकट्ठा करते रहते हैं नोटों के रूप में, सोने के रूप में इत्यादि, ये तो कभी भी कोई लूट कर ले जा सकता है, ये कभी भी चला जाएगा। लेकिन जो वेदों के आधार पर हम धन इकट्ठा करते हैं या उतना बड़ा धन लेते हैं वो कभी नहीं छूटता, मृत्यु के बाद भी नहीं छूटता, कोई उसे चोरी नहीं कर सकता, वो सदैव आत्मा के साथ रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर कोई थोड़ा भी इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वेदों के ज्ञान को, भक्ति के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, तो फिर वो बहुत आसानी से इस जगत के परे जा सकता है। और वेदों का ज्ञान क्या है, वेदों का सार क्या है, वेद किससे मिलते हैं, ज्ञान किससे मिलता है, गुरु की कृपा से। इसलिए भक्ति मार्ग का प्रारंभ है गुरु की कृपा, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने इसको दिखलाया। चैतन्य महाप्रभु जब ईश्वरपुरी से मिले तो बड़ा आदर सम्मान किया। ईश्वरपुरी उनको कहते थे, वो रोज जाते थे ईश्वरपुरी के पास। ईश्वरपुरी ने ग्रंथ लिखा था कृष्ण लीलामृत, उसको सुनने के लिए ईश्वरपुरी पढ़ा करते और चैतन्य महाप्रभु बैठकर सुना करते रोज। और वो भी ऐसे समय कि जब वो एक बहुत प्रकांड पंडित थे, निमाई पंडित के नाम से जाने जाते थे, बहुत सारे लोग उनसे सीखने के लिए आते थे। उनका इतना गुणगान था कि जो व्याकरण सीखने में नवद्वीप में लोगों को 12 वर्ष लगते थे, उसी व्याकरण को और भी अच्छे तरीके से निमाई पंडित केवल 6 महीने में सिखला दिया करते थे। अब वो तो भगवान हैं तो 12 वर्ष 6 महीना क्या 6 मिनट में भी सिखला सकते हैं। तो इतने प्रसिद्ध थे कोई उनको पछाड़ नहीं सकता था। केशव कश्मीरी, वो आए दिग्विजय पंडित, सारे भारत में कोई हरा नहीं पाया, निमाई ने चुटकियों में हरा दिया, प्रतियोगिता किए बिना हरा दिया। तो वो निमाई जाकर सुना करते थे ईश्वरपुरी से। तो एक दिन ईश्वरपुरी ने कहा कि निमाई तुम इस ग्रंथ को पढ़ो ठीक से, और इसमें अगर कोई गलती हो तो मुझे बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसमें गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं भगवान के, और आप जो भी भगवान को अर्पण करेंगे भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरी ने कहा, शायद ईश्वरपुरी ये कहने वाले होंगे कि अरे इस ग्रंथ को बाकी लोग भी पढ़ने वाले हैं, केवल कृष्ण नहीं पढ़ेंगे। केवल कृष्ण पढ़ने वाले होते तो ठीक है, कोई भी ग्रामर की मिस्टेक हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन बाकी लोग भी पढ़ेंगे तो तुम इसको थोड़ा सा ठीक करो। तो रोज सुनते निमाई जाकर और ईश्वरपुरी पढ़ा करते। एक दिन निमाई ने कहा कि यहां पर थोड़ी सी गलती है, एक पद गलती। उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, भक्ति की दृष्टि से नहीं निकाली थी, व्याकरण की दृष्टि से कि एक पद गलत है, यहां पर यह पद नहीं, यह होना चाहिए। तो ईश्वरपुरी ने सुना, रात भर उस पर चिंतन मनन करते रहे कि ये जो निमाई ने कहा यह सही है कि नहीं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा था, स्वयं निमाई कह रहे हैं, प्रकांड पंडित। फिर अगले दिन जब चैतन्य महाप्रभु आए ईश्वरपुरी के पास, तो ईश्वरपुरी ने कहा, उनको समझाया कि देखो तुमने ये कहा था कि कल इस पद की जगह ये पद होना चाहिए, लेकिन मैंने इस पर ध्यान दिया तो मैं मानता हूं कि तुम गलत हो, दरअसल वही पद सही है। आप सोचिए किसको ईश्वरपुरी गलत कह रहे थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण वेदेश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, जिन्होंने वेदों की रचना की है केवल उनकी बांसुरी बजाने से वेद प्रकट हो जाते हैं, उनको वो बता रहे थे कि तुम गलत हो, ये जो मैंने लिखा है वो सही है। और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ने समझाने का प्रयास नहीं किया कि नहीं नहीं एक्चुअली ऐसा होता है ये होता है। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी हार स्वीकार की, वो हार गए। उन्होंने दिखलाया कि भगवान प्रसन्न होते हैं जब भक्त उनको हराते हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु जानते नहीं थे कि वही सही है, लेकिन वो ईश्वरपुरी का गुणगान कराना चाहते थे और अपने भक्त के हाथों हारना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे उस भाव का, उस प्रेम का, उस आनंद का जो उन्हें अपने भक्त के हाथ से पराजित होने पर मिलता है। इसलिए पराजित हो गए, हार गए, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो सही है, मेरी पराजय हुई। यही निमाई पंडित है जो किसी से नहीं हारे थे, एक एक को पकड़कर व्याकरण का ऐसी ऐसी बातें सुनाते थे कि व्यक्ति पागल हो जाता था। एक ही चीज को कैसे करते थे वो वाद विवाद, एक चीज को समझाते, फिर जब वो व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता तो उसी का खंडन करते शास्त्रों के आधार पर। जैसे पहले कह देते ये बात सही है, वो कहता नहीं नहीं उसको कहीं यही सही है, फिर सामने वाला मान लेता हाँ आप जो कह रहे हो शास्त्रों के आधार पर ये सही है, फिर चैतन्य महाप्रभु उसको कहते नहीं ये गलत है, और फिर उसको गलत साबित करते, वो बेचारा अपने बाल नोच लेता कि क्या है ये, कुछ समझ, सब घबराते थे निमाई के सामने आने, इतने प्रकांड पंडित। उस समय नवद्वीप में जितने भी प्रतियोगिता होती थी लोगों का आनंद क्या था, एक दूसरे से वाद विवाद करना, शास्त्रों पर चर्चा करना, सोचिए क्या वातावरण रहा होगा नवद्वीप में। आज तो कोई कर ही नहीं सकते शास्त्रों पर वाद विवाद, लेकिन वहां हरेक का यही कार्य था, वो शास्त्रों पर वाद विवाद करते, उसी में आनंद आता था। और उन सारे लोगों में श्रेष्ठ थे चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित, और वो हार गए, उन्होंने स्वीकार किए। और क्यों हारे वो, क्या कारण था, वो सारे जगत को दिखलाना चाहते थे कि मैं ईश्वरपुरी को अपने गुरु के रूप में क्यों स्वीकार कर रहा हूं, क्या एक लक्षण है, क्या एक गुण है ईश्वरपुरी के अंदर जो चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया उनको, नम्रता। ईश्वरपुरी ने जब माधवेंद्रपुरी ऐसी अवस्था में थे, अपने देह को त्यागने वाले थे, उनकी बड़ी सेवा की, नम्र सेवा, हृदय से सेवा, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने, और उनकी नम्रता जब वो पहली बार आए शांतिपुर में, अद्वैत आचार्य सेवा कर रहे थे मंदिर के अंदर अपने विग्रह की, अद्वैत आचार्य ने देखा कि कोई महान भक्त आए हैं, लेकिन वो एक कोने में बैठ गए। अद्वैत आचार्य का बार बार ध्यान जा रहा था, उन्होंने मुकुंद से कहा जाकर देखो कौन है। मुकुंद गए, पूछा आप कौन हैं, उन्होंने कहा मैं तो बहुत शूद्र व्यक्ति हूं, लेकिन मुकुंद समझ गए कोई शूद्र व्यक्ति नहीं है, ये तो महान भक्त लग रहा है। तो मुकुंद ने भागवत के श्लोक पढ़ने प्रारंभ किए, गाना प्रारंभ किया भागवत के श्लोकों को, और ईश्वरपुरी अपने आप को संभाल नहीं पाए, भाव विभोर हो गए, और उनके भावों को देखकर फिर सभी भक्त जान गए कि ये कोई और नहीं हो सकते, केवल ईश्वरपुरी है। ये नम्रता थी उनकी, अपने आप को एक शूद्र के रूप में, उन्होंने आकर नहीं कहा कि मैं माधवेंद्रपुरी का शिष्य हूं, माधवेंद्रपुरी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि तुम्हें कृष्ण प्राप्त होंगे, नहीं, बड़े नम्र थे, कोने में आकर बैठ गए, बस अद्वैत आचार्य सेवा कर रहे हैं और देख रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके इस गुण का गुणगान कराने के लिए, उनकी इस योग्यता को दर्शाने के लिए और सारे जगत को ये सिखलाने के लिए कि भक्ति के लिए कितनी आवश्यक है ये नम्रता, उन्होंने उन्हें गुरु स्वीकार किया। तो चैतन्य महाप्रभु हार गए उस समय पर ईश्वरपुरी से। तो इसीलिए सारे वेदों का सार, बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, इस लीला से चैतन्य महाप्रभु क्या सिखला रहे हैं, वो सारा व्याकरण जानते थे, सारे वेदों को जानते थे, वेदों के अंगों को जानते थे, सारे जितने भी दर्शन के शास्त्र हैं, दर्शन के नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनको जानते थे। लेकिन उन सारे चीजों को जानते हुए उन्होंने उसके सार को प्रकट किया कि बड़े नम्र भाव से गुरु को समर्पण। तो इसीलिए सबसे बड़ा धन जब यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा ज्ञान, जिसको कोई ले नहीं सकता। लेकिन कौन सा ज्ञान? वेदों पर आधारित, शास्त्रों पर आधारित ज्ञान, अज्ञान नहीं। क्योंकि जो वेदों पर आधारित नहीं है वो तो अज्ञान है, जो शास्त्र पर आधारित नहीं है वो अज्ञान है, वो केवल उत्पात मचाता है। तो इसीलिए ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा धन लेने का प्रयास करना चाहिए जो कोई लुटेरा लेकर नहीं जा सकता। और ये तो ऐसा धन है कि जितना बांटते हैं उतना बढ़ जाता है। बताइए ऐसा कोई धन है? और लोग अगर अपना धन बांटने लगे तो क्या होगा? एक दिन खाली हो जाएगा खजाना। लेकिन ये ऐसा खजाना है कि आप जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है, जितना ज्ञान दूसरों को देंगे उतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने समझाया कि ये सबसे बड़ा धन ज्ञान है जो वेदों पर आधारित है। फिर उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उन्होंने पूछा कि सबसे अच्छी या सबसे बढ़िया आनंद व्यक्ति को क्या मिलता है, सबसे श्रेष्ठ आनंद क्या है व्यक्ति के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ आनंद है संतुष्टि। अगर व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो कभी आनंद नहीं पा सकता। देखिए कितनी सुंदर बात है, हम आनंद की बहुत सारी चीजों को ला सकते हैं, अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, मन से आनंद लेने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर संतुष्ट नहीं है तो फिर क्या आनंद होगा। लेकिन वहीं एक व्यक्ति अगर संतुष्ट है, आराम से रह रहा है, उसको कोई चिंता नहीं है, तो वो आनंद है, संतुष्टि, हृदय की संतुष्टि। लेकिन कैसी संतुष्टि? ऐसा व्यक्ति कब संतुष्ट हो सकता है? व्यक्ति को संतुष्ट होना चाहिए, भागवत में भी लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अलग अलग चीजों की शुद्धता का वर्णन करते हैं और उसका वर्णन करते हुए वो मन की शुद्धता का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि मन की शुद्धता संतुष्टि से आती है। भागवत में ये वर्णन है, सुखदेव गोस्वामी ने किया, कई चीजों का वर्णन किया, धन की शुद्धता कैसे होती है, मन की शुद्धता कैसे होती है, इच्छाओं की शुद्धता कैसे होती है। और उन्होंने कहा कि मन की शुद्धता संतुष्टि से होती है। जब व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तब बड़े आसानी से वो आनंद की प्राप्ति करता है और वो असली आनंद है। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, जो अशांत है, अशांतस्य कुतः सुखम, नास्ति बुद्धिर युक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नच भावयता शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही। वो कहते हैं लोग सुख के पीछे भागते हैं लेकिन अशांत हैं, संतुष्टि नहीं है हृदय में, शांति नहीं है, फिर अशांतस्य कुतः सुखम, ऐसे व्यक्ति को कहां सुख मिल सकता है? और क्यों संतुष्टि नहीं है? क्योंकि उसने अपने मन को वश में नहीं किया है, अर्थात मन को शुद्ध नहीं किया। जैसे सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि मन की शुद्धि है संतुष्टि, तो भगवान कहते हैं क्योंकि उसने मन को वश में नहीं किया, और मन को वश में करने के लिए अपनी बुद्धि को जागृत नहीं किया, आध्यात्मिक बुद्धि को। तो ये मार्ग है, अपनी संतुष्टि लाने के लिए हमें मन को वश में करना है और मन को वश में करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि को जागृत करना है। और आध्यात्मिक बुद्धि कैसे जागृत होती है? परमात्मा से संबंध के द्वारा। और परमात्मा से संबंध कैसा होता है? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। सततम कीर्तयन्तो माम, जब हम सतत भगवान का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, तब हमें संतुष्टि मिलती है। लेकिन ये संतुष्टि, भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें वर्णन किया गया है कि संतुष्टि कैसे प्राप्त करनी चाहिए। तपसा विद्या तुष्ट्या, तीन चीजों का वर्णन हुआ है, तपसा विद्या तुष्ट्या। जब व्यक्ति तपस्या करे, और कैसी तपस्या, विद्या, विद्या के आधार पर, सही विद्या के आधार पर, सही ज्ञान के आधार पर। तो जब व्यक्ति तपस्या करता है सही विद्या के आधार पर, तुष्टया, संतुष्ट होता है। नहीं तो तपस्या तो बहुत लोग करते हैं, हिरण्यकश्यपु ने की, रावण ने की, तो क्या संतुष्ट हुए? क्योंकि उनकी तपस्या ज्ञान पर आधारित नहीं थी। इसीलिए तपसा विद्या, ज्ञान पर, विद्या पर वो आधारित होनी चाहिए, और तब तुष्टया, तब हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो कैसा ज्ञान और कैसी तपस्या? भक्ति का ज्ञान और कृष्ण को पाने के लिए तपस्या, बस इतना ही चाहिए। भक्ति कैसे करनी है ये ज्ञान होना चाहिए, और कृष्ण को कैसे पाना है उसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए, उसको तपस्या कहते हैं। किसी को छोड़ना पड़े, कोई चीजों को छोड़ना पड़े, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अगर वो कृष्ण को पाने के लिए है तो तपस्या, वो सही तपस्या है। लेकिन वो व्यक्ति कब कर सकता है? जब भक्ति का ज्ञान प्राप्त करे, और फिर इसके द्वारा तुष्टया, संतुष्ट हो सकता है। तो संतुष्टि बड़ी आवश्यक है, और ये संतुष्टि आती है जब हम भक्ति मार्ग का बड़े अच्छे से पालन करते हैं, गुरु के आश्रय में जाते हैं। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, हम लोग रोज गाते हैं इसको। यस्य प्रसादात, जिनकी कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा, संस्कृत में प्रसाद शब्द कृपा के लिए आता है। इसीलिए जब हम लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं तो कहते हैं भगवान की कृपा है। तो यस्य प्रसादात, जिनकी कृपा से, भगवत प्रसादो, भगवान की कृपा मिलती है। यस्य अप्रसादात, और अगर उनकी कृपा ना हो, न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है फिर ऐसे व्यक्ति के लिए। ऐसे गुरु का हमें स्मरण करना चाहिए, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात न गति कुतोपि ध्यायन्त। तो ऐसे गुरु का हम सुबह दोपहर शाम तीनों समय उनका स्मरण करना चाहिए। तो इस तरह से हम अपने मन को, अपनी इच्छाओं को संतुष्ट कर सकते हैं, संतुष्टि प्रदान कर सकते हैं, ये कहना चाहिए कि मन को शुद्ध कर सकते हैं जब हम भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है संतुष्टि। जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है फिर उसके लिए ये जो आकांक्षाएं हैं इस भौतिक जगत के भोग करने की, एक जो तृष्णा है वो समाप्त हो जाती है, और जब वो समाप्त हो जाती है तो स्वाभाविक है वो भगवान की भक्ति करने के योग्य हो जाता है। क्योंकि इस जगत में दो चीजें बड़ा कष्ट देती हैं हमें, और जो व्यक्ति इन दो चीजों के परे जाता है, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, एक तो शोक करता है और दूसरा इच्छाएं करता है, बस इसी दोनों में हम लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति संतुष्ट है ना वो शोक करता है ना इच्छा करता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजाने वात्मकृतम विपाकम, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। और जो भक्त इस भाव में, ब्रह्मा जी के भाव में प्रार्थना कर सकता है, क्या प्रार्थना की ब्रह्मा जी ने, किस भाव में की? तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, हर कष्ट में, हर कठिनाई में जो भक्त हाथ जोड़कर, आंखों में आंसू लाकर भगवान से प्रार्थना करे कि आपकी कोई योजना होगी, कुछ तो आपकी योजना होगी, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, आपने कुछ सोच रखा होगा मेरे लिए, इसीलिए कष्ट मेरे जीवन में आपने दिए हैं। इस भाव में अगर कोई प्रार्थना करता है तुष्टया, संतुष्ट रह सकता है। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, जो भी है आपकी कृपा है, आपकी अनुकंपा है, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति पदे सदाय भाग, वो व्यक्ति सही दृष्टि में मुक्ति पद। चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि इस श्लोक में मुक्ति पद का अर्थ है भक्ति, कोई मुक्ति नहीं, इसीलिए मुक्ति पदे सदाय भाग। वो व्यक्ति जो इस प्रकार से हर अवस्था में हाथ जोड़कर भगवान से कह सके कि हाँ, ये कुछ तो आपकी योजना होगी, ये आपकी व्यवस्था है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे तो बहुत होना चाहिए था, आप तो छोटा सा दे रहे हैं मुझे। तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति पाने का योग्य हो जाता है, क्योंकि वो संतुष्ट हो जाता है तुष्टया। तो हमारी संतुष्टि, हमारी तपस्या, ये विद्या पर आधारित होनी चाहिए, अज्ञान पर नहीं, भावनाओं पर नहीं। कभी कभी लोग भक्ति करते हैं भावुक होकर। प्रभुपाद समझाते हैं कि अगर हमारा धर्म ये सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, दर्शन पर आधारित नहीं है, तो केवल भावनाएं हैं। रिलीजन विदाउट फिलॉसफी सेंटिमेंट। तो फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है? भक्ति का ज्ञान, शास्त्रों से ज्ञान को स्वीकार करना, उसको समझने का प्रयास करना, तब ये खाली भावनाएं नहीं रहेंगी। और दर्शन भी अगर उसमें धर्म नहीं है तो फिर वो केवल स्पेक्यूलेशन हो जाता है, केवल हम लोग विचार करते हैं, मानसिक विचारधारा रह जाती है, वो केवल कल्पनाएं रह जाती हैं। तो इसीलिए ज्ञान चाहिए, भक्ति का ज्ञान, सिद्धांत भक्ति के। और जब हम ऐसी कथाएं पढ़ें, भागवत पढ़ें, महाभारत पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो इनसे सिद्धांतों को लेना चाहिए, खींचना चाहिए। अगर उन सिद्धांतों को नहीं लिया तो कोरी कथाएं रह जाएंगी, दंत कथाएं बन जाएंगी हमारे लिए। लेकिन हमें इन कथाओं से ऐसे सिद्धांतों को खींचना चाहिए, जैसे वो स्पंज होता है, वो पानी को खींच लेता, उसको केवल रख दीजिए तो पानी को खींच लेता। तो ऐसे हमें इन कथाओं से उन सिद्धांतों को निचोड़ना चाहिए, पानी लिया है बाद में निचोड़ना चाहिए, ताकि वो सिद्धांत निकले कि ये कथा का। नहीं तो कितनी बार ये कथा हम लोग सुन चुके हैं, हाँ चारों भाई मर गए, फिर युधिष्ठिर आए, उन्होंने उत्तर दिया, हो गया खत्म। और एक उत्तर सबको केवल पता है, अहनी अहनी भूतानी गच्छन्ति यमालयम, बस यही उत्तर दिया। क्या आश्चर्य की बात है, यही आश्चर्य। लेकिन हमें सार निकालना चाहिए, निचोड़ना चाहिए, ताकि भक्ति में लाभ हो सके। तो अगला प्रश्न यक्ष ने पूछा कि अज्ञान क्या है। अगला ने बहुत सारे प्रश्न और बीच में भी थे, अज्ञान क्या है उन्होंने पूछा, और भी आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न है, उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने पूछा था कि आलस क्या है। तो हम सोच रहे थे ये प्रश्न हम सबके लिए बहुत अच्छा है, आलस क्या है। तो उन्होंने पूछा कि अज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, मोहो ही धर्म मूढ़त्वम। युधिष्ठिर महाराज ने ये कहा, उत्तर दिया कि जब मोह के कारण धर्म मूढ़त्वम, धर्म को भूल जाता है या धर्म नहीं रहता, तो उस अवस्था को अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान मतलब ये नहीं कि हमें इस भौतिक जगत का कुछ ज्ञान नहीं है, कैसे कोई मशीन बनती है, कैसे चलती है, वो ज्ञान नहीं तो व्यक्ति अज्ञानी है, नहीं। अगर धर्म नहीं है, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना, तो जहां धर्म की अनुपस्थिति रहती है उस अवस्था को अज्ञान कहते हैं। और वो भी कैसे, मोहो ही धर्म मूढ़त्वम, मोह के कारण, मोह के कारण व्यक्ति धर्म को भूल जाता है। आज समाज में देखिए बड़ी दुख की बात है कि लोगों को जाकर समझाना पड़ता है कि भगवान है, धर्म का पालन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। कितनी दुख की बात है, मनुष्य कौन से स्तर पर पहुंच गया है जहां उसको समझाना पड़ रहा है कि तुम कहां से आए हो, तुम्हें कौन खिला रहा है, इस बात को देखो अपने आसपास, ये कौन चला रहा है जगत, तुम चला रहे हो, तुम्हारे अंदर शक्ति है इस जगत को चलाने की। अभी कुछ दिन पहले कुछ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा दावा किया कि हमने जीवन उत्पन्न कर लिया है। सारे अखबारों में खबर आ गई कि वैज्ञानिकों ने जीवन उत्पन्न कर लिया है, अब भगवान की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़े दिन, दो दिन बाद ही उसको रिफ्यूट हो गया, उसमें आ गया कि नहीं नहीं ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि जीवन उत्पन्न कर नहीं सकते, शक्ति नहीं है। जीवन तो छोड़िए, हमारे जीवन की उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो भी नहीं बना सकते। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, प्रभुपाद पूछते थे क्या उसमें अन्न उगा सकते हैं, अन्न बना सकते हैं बिना पृथ्वी के, बिना पानी के? और पृथ्वी पानी भी हो तो वो अन्न का दाना तो चाहिए, क्या वो बना सकते हैं अपनी फैक्ट्री में या नट बोल्ट उगाएंगे? तो इसलिए मनुष्य किस स्तर पर चला गया है जहां धर्म को भूल गया है और अपने ही धर्मों को उसने बना दिया है, उत्पन्न किया है अपने धर्मों को, नए नए धर्म। किसी का कोई धर्म है, किसी का क्या धर्म है, वो कहते हैं हमारे धर्म के अनुसार हम पशु को मार कर खा सकते हैं, हमारे धर्म के अनुसार हम भोग कर सकते हैं, हमारे धर्म में ये लिखा है, हमारे धर्म, ये सब बनाए हुए धर्म है। कृष्ण ने एक ही धर्म दिया है, भगवान ने एक ही धर्म दिया है जो सबके लिए है, फिर वो चाहे क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, धर्म एक ही है, जीवों से प्रेम करना, भगवान से प्रेम करना, यही धर्म है। सारे धर्मों का सार यही है, भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। जीसस ने कई बार इस बात को दोहराया, कौन लोग किंगडम ऑफ गॉड को प्राप्त कर सकते हैं, बार बार उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया, भगवान का धाम। तो क्यों कहते थे वो बार बार? क्या वो चाहते थे कि उनके जो अनुयायी हैं यहीं पर रहें, आराम से खाएं पिएं, एक बहुत अच्छा जीवन जिएं, किसी का बुरा नहीं करें? नहीं, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, कितनी बार ये शब्द आया, भगवान का धाम, हमें वहां जाना है, यही समझाने के लिए वो आए थे। लेकिन लोगों ने उनको ही मार डाला, समझे नहीं लोग, ये आदमी गलत बोलता है। और ऐसा होता है, ये समाज है, ये कलयुग है, जहां लोग भगवान के बारे में बोलने जाते हैं तो उनको ही दबा दिया जाता है। सेंट वैलेंटाइन, जिसके नाम पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, ब्रह्मचारी थे, कोई हाथ में गुलाब का फूल लेकर लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहे थे, वो ब्रह्मचारी थे, भगवान के नाम का प्रचार करते थे, मार डाला उनको, और उसी दिन मारा जिस दिन आप वैलेंटाइन डे मनाते हैं, मार दिया। क्यों? भगवान के नाम का प्रचार करते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, हरिदास ठाकुर भगवान का नाम ले रहे थे, उनको मारा, 22 बाजारों में उनको पीटा गया, क्यों? भगवान का नाम ले रहे थे। और आज ये समाज ऐसा है कि उससे भी बदतर हो गया है, आज वो खुद नहीं लेते, किसी को लेने नहीं देते, भोग प्रवृत्ति। एक कारण है भगवान के नाम ना लेने का, भय कि हमारी भोग प्रवृत्ति में बाधा नहीं आ जाए। अरे कल को अगर भगवान कहेंगे नियम पालन करने पड़ेंगे, इस्कॉन वाले पहले दिन से ही 4 नियम बता देते हैं, इसलिए जाना नहीं इस्कॉन में। जैसे प्रभुपाद बताया करते थे, कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता था, मैंने कहा ब्राह्मण बनना चाहता हूँ, अच्छा क्या करना है? ये 4 नियम पालन करने। बोले नहीं होगा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शूद्र ही ठीक हूँ, नहीं बनना है ब्राह्मण। तो ये समाज है आज, भोग को छोड़ना नहीं चाहता है। त्याग, वैराग्य, ये सब बड़े बड़े शब्द हैं उनके लिए, ये रखे हुए उन्होंने उन सन्यासियों के लिए, उन बाबा जियों के लिए। बस आप करो, आपके लिए सन्यास, आपके लिए त्याग बहुत अच्छा है, हमें ये शिक्षा मत दो। अभी हम बंबई में थे तो एक भक्त बता रहे थे, वो एक व्यक्ति को प्रचार करने गए, एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, बहुत धनवान व्यक्ति है। तो उसने कहा, जब और सबको पैसे देता था दान धर्म, तो इस्कॉन के भक्त भी गए, उन्होंने कहा आइए थोड़ा धन। तो उन्होंने कहा मैं बनूंगा, मंदिर वंदिर आऊँगा, लेकिन नहीं, मैं आपको धन दूंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उसने कहा बताइए क्या। सबसे पहला, मुझे जप करने के लिए मत कहना कभी भी। उसने कहा ठीक है, बिल्कुल नहीं कहेंगे आपको जप करने के लिए। दूसरा, मुझे मंदिर आने के लिए मत कहना। ठीक है, नहीं आने के लिए कहेंगे। मतलब इतना वो उन भक्तों के प्रति इतना ऐसे बात कर रहा था कि जैसे ये सब मुझसे मत करना, ये किए बिना मेरे पास आओगे तो मैं दे दूंगा मुझे। हाँ, तीसरा उसने कहा मुझे खाना पीना छोड़ने के लिए मत कहना, क्योंकि उसको सब बताया गया था। देखो इस्कॉन वाले हैं ना, वो धीरे धीरे सब करवा देते हैं। तो ये भक्त बता रहे थे कि जब पहली बार उनके पास गए तो उन्होंने शर्तें रखी, मुझे ना तो जप करने के लिए कहना, ना खाना छोड़ने के लिए कहना, ना मंदिर आने के लिए कहना, पैसा चाहिए ले जाओ, लेकिन ये सब नहीं। मैं खाता पीता हूँ, सब करता हूँ, ये देखो लाइन लगा रखी है देवी देवताओं की। उसने दिखाया अपने ऑफिस में, सारे प्राय सभी देवी देवता थे। और हाँ, चौथी बात उसने ये भी कही, ये देवी देवताओं की पूजा बंद करने के लिए मत कहना है, मुझे मालूम है तुम लोग सब यही करते हो। उसने कहा कुछ नहीं कहेंगे आपको, जप करने के लिए नहीं कहेंगे, देवी देवताओं की पूजा बंद करने के लिए नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, ठीक है। तो बता रहे थे भक्त की, धीरे धीरे जाते रहे उनके पास, केवल मिलते थे, कुछ नहीं कहते थे। बोलते एक बार गलती से किसी दूसरे भक्त को ले गए साथ में, कोई दूसरा ब्रह्मचारी था, उसको बताया नहीं था, जा रहे थे, अचानक बोला चलो उसको मिल के आते। तो बोले जैसे ही गया उसके ऑफिस में, गई क्या आपने लगा रखा है ये सब, ये देवी देवता यहाँ पर। बोले चुप चुप, बोलना नहीं कुछ। तो उसने कहा क्या हो गया। अरे मैं कुछ गलत नहीं, चुप, बोलना नहीं। बोलते मैं बाहर ले आया उसको। फिर काफ़ी दिन हो गए, बीत गए, तो फिर उसके बाद कोई तो उत्सव था वो मना रहे थे, वो हर उत्सव मनाते थे। तो उन्होंने इनको कह दिया कि भाई आप लोग कीर्तन वीर्तन करते हो क्या। हाँ करते हैं, तो हमारा काम ही वही है, ये सब तो हमारा साइड बिजनेस है, पैसा वैसा लेना था, मेन काम तो कीर्तन करना है। तो ठीक है आप आ सकते। बोला आ जाएंगे। तो पहले दिन बोलते कीर्तन करने चले गए। और ये जो जिनकी बात कर रहे हैं काफ़ी वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं ये, और ये ऐसा ठीक है। उन्होंने कहा जाके हम लोगों ने कीर्तन वीर्तन किया, उसको बहुत अच्छा लगा, अगली बार भी आना। बोला ठीक है। तो ऐसे धीरे 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 करते गए। बोले एक दिन उसने मुझसे खुद ही पूछा, ये आप लोग ये जो करते हो ये माला मिले की क्या है ये। तो बोले हाँ अभी बराबर आ गया टाइम। उसने कहा वो काफ़ी समय बीत गया था, कई महीने, प्राय साल कुछ नहीं बोला था, जप नहीं करना। बोल ठीक है आपने बोला ना, कुछ नहीं बोलूँगा। तो ये जो आप लोग करते हो क्या है। कुछ नहीं, हम लोग माला पे अपना नाम जप करते। क्या नाम जप करते हो। वो भगवान का नाम है। क्या नाम है। बोले हाँ अभी बराबर आ गया है। फिर उन्होंने बताया ऐसे हम लोग महामंत्र जप करते हैं। फिर भी नहीं बोला कि आप कीजिए। तो उसने बोला अच्छा बहुत अच्छा, इससे क्या होता है। भाई कुछ नहीं, हमारे नियम हैं, हम करते हैं, थोड़ा मन वन शांत हो जाता है। अच्छा मन शांत होता है। हाँ तो ठीक है, मुझे भी बताओ कैसे करना। हाँ ये लो, पहले माला दिया, कुछ नहीं बोला कि ये माला ले रहे हो, अब ये नियम पालन करो, कुछ नहीं। तो बता रहे धीरे 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 2 साल 3 साल बीत गए। और अब जब हम गए थे पिछली बार मंदिर में थे तो बता रहे थे कि अब वो भक्त दीक्षा के लिए जा रहे हैं। जिसने पहले ही कहा था मुझे छोड़ने के लिए नहीं कहना, देवी देवताओं को हटाने के लिए नहीं कहना, कुछ नहीं। बोले अभी ऑफिस से सब हट गया है, कृष्ण की फोटो है और अभी उनकी दीक्षा होने वाली है। अर्थात ये लोगों का भाव है बाहर कि वो भयभीत हैं, अपने भोग को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कृष्ण नाम इतना पावरफुल है, किसी तरह घुस गया ना बस। इसलिए प्रभुपाद कहते थे टाइम बॉम्ब्स है, फटने वाले हैं। तो भक्तों ने थोड़ा बहुत लेके थोड़ा उसको बुक्स भी दी थी, पढ़ता नहीं था, कोई बात नहीं, प्रभुपाद के कहा है ना रखो, फटेंगी एक दिन। तो आज वो बहुत भक्त बहुत खुश थे। इस बार जब हम गए थे तो बता रहे थे कि इतने सालों की एक ही व्यक्ति पर उन्होंने मेहनत की, लेकिन बोले मेहनत कामयाब हो गई। और वो व्यक्ति अभी इस समय उस मंदिर का बहुत बड़ा डोनर है, अभी उसने सब जगह बंद कर दिया है, केवल मंदिर में देता है। तो बता रहे थे कि जब वो गए थे तो उन्हें केवल वो चाहते तो केवल डोनेशन लेके बंद कर देते कि ठीक है ना, तुमको कुछ नहीं करना है, ना जब करना है, ठीक है दर्शन दे दिया ना, खुश है। इन्होंने कहा नहीं, इसको भक्त बनाकर छोड़ूंगा मैं। तो अभी ऐसा हुआ है। तो ऐसे लोग हैं बाहर के ज़माने में जो करना नहीं चाहते। तो इसीलिए मोहो ही धर्म मूढ़त्वम, धर्म को भूल गए हैं। तो इस विषय पर और अगली बार चर्चा करेंगे, और कुछ संवाद थोड़ा सा और बाकी है, ये अगले मंगलवार को। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Thank you.